This is an ABP Life podcast.
आप सभी को शायद पता तो होगा ही, और नहीं पता है तो बता देती हूँ। चुनाव आयोग यानी कि ECI ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 का ऐलान कर दिया है। भारत में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं यानी कि फर्स्ट सिटीजन। इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को नोटिफिकेशन यानी कि अधिनियम जारी होगा। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना यानी कि वोट की काउंटिंग 21 जुलाई को होगी। जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। इसी तरह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। कॉमन सेंस बेसिक। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री, चौथे पर राज्यों के राज्यपाल यानी कि गवर्नर्स यानी कि अलग अलग राज्यों के दोस्तों अलग अलग गवर्नर्स होते हैं, तो वो। पांचवे नंबर पर देश के पूर्व यानी कि एक्स राष्ट्रपति एक्स प्रेसिडेंट और इसी के साथ देश के उप प्रधानमंत्री आते हैं। इसके बाद छठे सर्वोच्च नागरिक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। सातवें नंबर पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। कोई भी आम नागरिक यानी कि आप और मैं देश का 27वां नागरिक होता है। इस पर विस्तार से कभी बात करेंगे, लेकिन इस एपिसोड में मैं आज आपको देश के सर्वोच्च नागरिक यानी कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है उसकी प्रक्रिया बताऊंगी। ये भी आपको बताऊंगी कि कैसे इस पद के लिए नॉमिनेशन माने नामांकन भरा जाता है, ऐसी क्या योग्यताएं यानी कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक राष्ट्रपति पद के लिए, और उसके आगे पीछे की सभी बातें। तो चलिए आज जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 की डेट आई है, तो सोचा कि आपको बताऊं कि एक राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे है, जो उसका सिलेक्शन है वो होता कैसे है। तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनाव होता है। अब आप सोचेंगे मैंने कौन सी संस्कृत बोल दी है। तो जी, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी कि प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है वो होता है डायरेक्ट, और जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो है इनडायरेक्ट। देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे तौर पर खुद से नहीं करती है, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, यानी कि हमने जिन्हें चुना है लोकसभा इलेक्शंस में या फिर कोई विधानसभा इलेक्शंस में, वो लोग जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा वोट के आधार पर चुने प्रतिनिधि करते हैं, तो इसका साफ मतलब है कि प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। तो भाई कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ जानते हैं। पहला, भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची जमा करनी होती है। समझ रहे हैं? तो जो प्रस्तावक यानी कि स्पॉन्सर्स और समर्थक यानी कि आपके जो सपोर्टर हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव 2022 में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा 1952, 1957, 1962, 1967 और 1969 के चुनावों के बाद 1974 में मतदाताओं को प्रस्तावित करने और एक व्यक्ति की उम्मीदवारी का प्रस्ताव देने का ये नियम अपनाया गया था। दूसरा, राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहीं सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मत पत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मत पत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिया जाता है, समझ रहे हैं? मतलब कोई नॉर्मल पेंसिल या पेन से आप नहीं भर सकते हैं, जिसका उपयोग वो सिर्फ अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक हर मत पत्र में उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचक प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी वरीयता को इंगित करता है, जिस उम्मीदवार को वे राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक पसंद करते हैं उनके लिए एक नंबर चुनते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के लिए दो जो उनकी दूसरी वरीयता यानी कि प्रेफरेंस, और इसी तरह अन्य वरीयता यानी कि इसी तरीके से वो सीक्वेंस में अपने प्रेफरेंसेस बताते हैं। हालांकि ये बता दें कि जो भी निर्वाचक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए वरीयता यानी कि प्रेफरेंसेस चिन्हित करता है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो सभी उम्मीदवारों का चयन करे, वो केवल पहली वरीयता को ही चिन्हित कर सकता है। यानी कि अगर पांच नाम आपके सामने हैं तो जरूरी नहीं कि आप सभी पांच को अपनी प्रेफरेंस के सीक्वेंस में लिखें कि भाई मेरे को पहले ए पसंद है, फिर मेरे को दूसरे पर सी नंबर पसंद है और मेरे को तीसरे पर जेड पसंद है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको उनमें से एक या दो ही पसंद आ रहे हैं तो आप साफ लिखिए कि भैया एक पे मैं इनको रखूंगा या रखूंगी, दो को मैं इनको रखूंगी, बाकी शायद आपको पसंद नहीं आते हो। इट्स लाइक नोटा। तीसरा, वोटिंग के बाद विधायकों के मत पत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यदि उत्तर प्रदेश के किसी विधायक ने रामनाथ कोविंद को अपनी पहली प्रेफरेंस के रूप में चिन्हित किया था, चूज किया था, तो विधायक का मतपत्र कोविंद के ट्रे में गया होगा। फिर इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतपत्रों का वितरण किया जाता है, डिवीजन किया, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन सांसद ने पिछले चुनाव में मीरा कुमार को अपनी पहली प्रेफरेंस के रूप में चिन्हित किया था, चूज किया था, उन सांसदों के सभी मतपत्र कुमार की ट्रे में गए होंगे। अब बताते हैं कि वोट की गिनती कैसे होती है। तो जो वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है, दो राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है, उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा आता है वही उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। बहुत मैथ से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जनसंख्या साल 1971 की जनगणना के मुताबिक 8,38,69,905 है। उस हिसाब से यहाँ एक विधायक के मतपत्र का मूल्य 208 है। किसी भी सांसद यानी कि राज्यसभा या लोकसभा से हो उसके मतपत्र का मूल्य 708 ही रहेगा। अब बताती हूँ कि राष्ट्रपति पद का विजेता जो विनर है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। इट माइट कम टू यू एज अ शॉक, मगर राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वो व्यक्ति थोड़ी ना होता है जिसे सबसे अधिक सबसे ज्यादा मत प्राप्त होते हैं। पर आप पूछेंगे फिर क्या होता है जब वोट्स के ऊपर डिसाइड नहीं हो रहा है तो फिर किस चीज पर डिसाइड हो रहा है। तो बताती हूँ, बल्कि वो व्यक्ति विनर होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मत प्राप्त होते हैं, अधिक वोट मिलते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर योग को दो से विभाजित यानी कि डिवाइड करके और भागफल यानी कि क्वोशेंट में एक जोड़कर कोटा तय किया जाता है। जो उम्मीदवार तय कोटे से अधिक वोट प्राप्त करता है वह विजेता हो जाता है। यदि किसी को कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को रेस से ही हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवारों के मतपत्र उन मतपत्रों में दूसरी प्रेफरेंस पसंद के आधार पर बाकी उम्मीदवारों के बीच वितरित यानी कि बांटे जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है ताकि ये देखा जा सके कि कोई तय कोटा से ऊपर मत पा सका है या नहीं। अब ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी का वोट कोटा से अधिक तक नहीं पहुंच जाता या जब तक लगातार निष्कासन के बाद यानी कि एलिमिनेशन के बाद एक उम्मीदवार नहीं बच जाता, तब उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार द्वारा आवश्यकताएं यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो जी, अनुच्छेद 58 के तहत एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए निम्न शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। चौथा, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अंडर या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटीज के अधीन किसी भी उप सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। हालांकि उम्मीदवार किसी भी राज्य के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्रियों का पद धारण कर सकता है और चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। तो जी, आज हमने आपको प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाता है उस पर एक एक चीज बड़ी ही सरलता के साथ बताई है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि भारत में प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। उम्मीद है कि आपको आज का एफआईआर अच्छा लगा होगा, थोड़ा ज्ञान आपने भी पाया होगा। आज के लिए बस इतना ही, वीकेंड अपना अच्छे से मनाएं, प्लीज मास्क अप गाइस, क्योंकि कोरोना के केसेस अभी फिर से बढ़ने चालू हुए हैं। तो अपना ख्याल रखें, हमारे पॉडकास्ट का ख्याल रखें। अगर हमसे कोई बात कहनी हो, कोई गिला शिकवा हो, तो जाकर के ट्विटर पन्ने पर लिख दें या फिर फेसबुक के हमारे एबीपी लाइव पॉडकास्ट के पन्ने पर लिख दें, एबीपी न्यूज़ के पन्ने पर लिख दें। मैं आपसे जरूर बात करूंगी, मैं आप तक अपनी राय पहुंचाऊंगी, आप मुझ तक अपनी राय पहुंचाएं। वापस मिलूंगी अगले एफआईआर में विद अ क्वेयर मी अप एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें एबीपी लाइव पॉडकास्ट एफआईआर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस। डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।